एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कई दशकों पहले इतिहास की एक बनी बनाई धारणा को चुनौती दी थी।
जी हाँ,
और कमाल ये है कि वो आज भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे हैं बैसिल डेविडसन की क्लासिक किताब द अफ्रीकन जीनियस, एन इंट्रोडक्शन टू अफ्रीकन कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री। ये किताब 1969 में आई थी,
काफी पहले।
हाँ, और इसने उस सोच पर सीधा सवाल उठाया जो ये मानती थी कि भाई यूरोप के आने से पहले अफ्रीका का कोई अपना इतिहास, कोई संस्कृति, कोई उन्नत समाज था ही नहीं।
हाँ, जिसे अक्सर वो डार्क कॉन्टिनेंट या अंधकारमय महाद्वीप कह दिया जाता था। डेविडसन ने इस विचार को मतलब पूरी तरह खारिज कर दिया।
उनका मकसद ये दिखाना था कि औपनिवेशीकरण से बहुत पहले, सदियों पहले, अफ्रीकी समाजों की अपनी खास विकसित शासन प्रणालियां थीं, अपनी सामाजिक संरचनाएं, अपने कानून, अपना जीवन दर्शन था।
और ये समझना आज भी जरूरी है ना, सिर्फ अतीत की बात नहीं है ये।
बिल्कुल, आज भी अगर हमें अफ्रीका की जटिलताओं को समझना है, उसकी चुनौतियों को, उसकी संभावनाओं को, तो डेविडसन का काम हमें एक बहुत जरूरी बुनियाद देता है।
ये उन अंदरूनी विचारों और ढांचों को समझने की कोशिश है जिन्होंने सदियों तक अफ्रीकी सभ्यताओं को संवारा, उन्हें बनाए रखा। बाहरी दखल से पहले ये व्यवस्थाएं कैसे काम करती थीं, उनका असल मकसद क्या था।
सही कहा, तो जानना जरूरी है आज भी।
तो चलिए, इस अहम काम के पीछे जो शख्स हैं जिन्होंने ये नजरिया दिया, पहले उन्हें थोड़ा जानते हैं। कौन थे ये बेसिल डेविडसन?
बेसिल डेविडसन 1914 से 2010 तक वो एक ब्रिटिश पत्रकार थे, इतिहासकार, लेखक और आगे चलकर अफ्रीकी इतिहास के सबसे सम्मानित पश्चिमी विद्वानों में से एक माने गए।
और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई पारंपरिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वाले रास्ते से नहीं आए थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका करियर तो पत्रकारिता से शुरू हुआ, फिर दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के लिए एक खुफिया अधिकारी के तौर पर भी काम किया, यूगोस्लाविया में खास तौर पर।
अच्छा, तो इन अनुभवों ने जरूर उनकी नजर को पैना किया होगा, मतलब जमीनी हकीकतों को समझने की, जटिल स्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ी होगी।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। और फिर युद्ध के बाद जब अफ्रीका में आजादी की लहर चल रही थी, वो एक पत्रकार के तौर पर वहां गए।
वो बहुत अहम दौर था।
बहुत अहम। उन्होंने आजादी के संघर्षों को बहुत करीब से देखा और कई जो उभरते हुए अफ्रीकी नेता थे ना, जैसे क्वामे नक्रुमा घाना में या अमिलकर कैब्राल, ऑगस्टिनो नेटो, उनके साथ गहरे रिश्ते बनाए। वो सिर्फ खबरें नहीं लिख रहे थे, वो उस बदलाव को, उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे जो अफ्रीका को नया आकार दे रही थी।
और यही बात, मतलब ये जमीनी अनुभव, लोगों से सीधा जुड़ना, उन्हें उस दौर के कई दूसरे इतिहासकारों से अलग करता है जो शायद सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर लिख रहे थे।
बिल्कुल, वो सिर्फ अफ्रीका का अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो उसके संघर्षों से, उसकी उम्मीदों से जुड़ रहे थे। वो सिर्फ एक बाहर के ऑब्जर्वर नहीं थे, बल्कि वो अफ्रीकी इतिहास को उसका सही सम्मान दिलाने के लिए एक तरह से लड़ रहे थे।
एक पैरोकार थे।
हाँ, एक पैरोकार। उनके काम में पत्रकारिता वाली जिज्ञासा है, उनका अपना अनुभव है और अफ्रीकी लोगों और उनकी संस्कृतियों के लिए गहरा सम्मान झलकता है।
और इसी नजरिए से उन्होंने ये किताब लिखी, द अफ्रीकन जीनियस।
जी, ये किताब पारंपरिक अफ्रीकी समाजों के, आप कह सकते हैं, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने की एक बहुत गहरी और महत्वाकांक्षी पड़ताल है।
इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि उन नस्लवादी विचारों को चुनौती दी जाए जो औपनिवेशिक शासन को सही ठहराते थे, ये कहकर कि अफ्रीका के पास तो अपनी कोई सभ्यता थी ही नहीं।
हाँ, यही मुख्य तर्क था। डेविडसन कहते हैं कि अगर हमें आज के अफ्रीका को समझना है, तो पहले उन बुनियादी विश्वासों और संस्थानों को समझना होगा जिन्होंने हजारों सालों तक वहां के जीवन को दिशा दी।
तो ये सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों का इतिहास नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अफ्रीकी संस्कृतियों की मानसिक बनावट को समझने की कोशिश है कि लोग दुनिया को कैसे देखते थे, समाज में अपनी जगह को कैसे समझते थे, एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते कैसे निभाते थे। इसका उद्देश्य इन अंदरूनी लॉजिक्स को समझना है।
किताब हमें एक तरह की बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है।
हाँ, डेविडसन शुरुआत करते हैं समाज की नींव से, यानी विश्वास और विचार प्रणालियों से। वो बताते हैं कि उनका ब्रह्मांड को देखने का नजरिया क्या था, पूर्वजों की क्या भूमिका थी।
और यहाँ तक कि जादू टोना जैसी चीजों की भी बात करते हैं।
हाँ, और वो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करते, वो उसके जटिल सामाजिक कार्यों की जांच करते हैं, एक सुसंगत विश्व दृष्टि के तार्किक हिस्से के रूप में देखते हैं। उनका मकसद इन प्रणालियों के अंदरूनी तर्क को समझना है।
और फिर इस विश्वास की नींव से वो बाहरी दुनिया की तरफ आते हैं, मतलब सत्ता और शासन कैसे चलते थे।
बिल्कुल, वो बड़े केंद्रीकृत राज्यों जैसे घाना का अशांति साम्राज्य या नाइजीरिया का बेनिन साम्राज्य, इनकी तुलना उन समाजों से करते हैं जिन्हें अक्सर राज्य विहीन समाज कहा जाता है,
जैसे नाइजीरिया के इग्बो लोग।
हाँ, इग्बो लोग, जिन्होंने बिना किसी केंद्रीय राजा या सरकार के भी कमाल की सामाजिक व्यवस्था हासिल की थी। डेविडसन यहाँ दिखाते हैं कि राजनीतिक संगठन कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं उसके।
और किताब का अंत फिर बाहरी ताकतों के प्रभाव पर होता है।
जी, अंत में किताब उन विनाशकारी बदलावों की बात करती है जो बाहरी ताकतों, खासकर यूरोप के आने से हुए। अटलांटिक दास व्यापार ने कैसे समाजों को अंदर से खोखला किया।
सिर्फ इंसानों को पकड़ना नहीं था वो,
नहीं, वो एक राजनीतिक और सामाजिक कैंसर की तरह था। और फिर उपनिवेशवाद का विश्लेषण है कि कैसे उसने जानबूझकर स्थानीय व्यवस्थाओं को तोड़ा और एक पहचान का संकट पैदा किया,
जिसके असर आज भी महसूस होते हैं।
हाँ, आज भी। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब एक पूरी विश्व दृष्टि को फिर से सामने लाने, उसकी उपलब्धियों को दिखाने और उसके बिखरने की कहानी कहने का एक जबरदस्त प्रयास है। इसका अंतिम उद्देश्य अफ्रीका की उस छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करना है।
तो डेविडसन इस जीनियस को, इस प्रतिभा को कैसे परत दर परत खोलते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं वो?
शुरुआत होती है अंदरूनी दुनिया से। भाग एक है विश्वास की संरचनाएं। डेविडसन समझाते हैं कि पारंपरिक अफ्रीकी सोच में धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी अलग अलग नहीं थे, जैसे पश्चिम में अक्सर होता है।
अच्छा।
हाँ, दुनिया को एक जीवन शक्ति से भरपूर माना जाता था और समाज का मुख्य उद्देश्य था इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंदर संतुलन बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना। धर्म कोई अलग गतिविधि नहीं थी, बल्कि जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया था।
और इसमें पूर्वजों का स्थान बहुत खास था, है ना? आपने पहले भी जिक्र किया था।
बहुत खास। पूर्वजों को सिर्फ मरे हुए लोग नहीं माना जाता था, वो समुदाय के सक्रिय शक्तिशाली सदस्य समझे जाते थे। वो जीवित लोगों और क्या कहते हैं, दिव्य शक्तियों के बीच मध्यस्थ थे।
अच्छा, मतलब एक पुल की तरह।
हाँ, एक पुल की तरह। वो परंपरा और नैतिक नियमों के संरक्षक थे। ये विश्वास समाज को जोड़ता था, उसे एक निरंतरता देता था और कानूनों को भी नैतिक बल मिलता था, क्योंकि माना जाता था कि ये पूर्वजों की मर्जी से हैं। रिश्तेदारी सिर्फ खून का रिश्ता नहीं थी, वो एक पवित्र, एक ऐतिहासिक बंधन थी।
और वो जादू टोने वाली बात, वो भी इसी भाग में है। उसे पश्चिमी नजरिए से तो अक्सर सिर्फ अंधविश्वास मान लिया जाता है।
और दूसरा, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सामाजिक नियंत्रण का भी एक जरिया था। जादू टोने के आरोप अक्सर तब लगते थे जब समाज में कोई तनाव हो, कोई ईर्ष्या हो, कोई झगड़ा चल रहा हो।
अच्छा, तो ये एक तरह से समाज की अंदरूनी समस्याओं को बाहर लाने का तरीका था।
बिल्कुल, किसी पर आरोप लगाकर और फिर उस मामले से निपटकर समुदाय एक तरह से अपनी छुपी हुई सामाजिक बीमारियों का पता लगाता था और उनका समाधान करता था। ये न्याय और सामाजिक संतुलन को फिर से बनाने का एक तरीका था। हालांकि ये खतरनाक भी हो सकता था, इसमें किसी निर्दोष पर भी आरोप लग सकता था, पर उसका मकसद समुदाय के भीतर के तनाव को सतह पर लाना और उससे निपटना था।
ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, तो विश्वास की इन प्रणालियों को समझने के बाद डेविडसन बाहरी दुनिया की तरफ आते हैं, शक्ति की संरचनाएं।
हाँ, भाग दो। यहां वो बताते हैं कि ये अंदरूनी विचार राजनीतिक और कानूनी ढांचों में कैसे नजर आते थे, और वो इस यूरोपीय सोच को सीधी चुनौती देते हैं कि सरकार का एकमात्र सही या विकसित रूप एक केंद्रीकृत राज्य ही है।
ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर यही मान लिया जाता है।
हाँ, वो दिखाते हैं कि कई अफ्रीकी समाजों में सरकार का उद्देश्य शक्ति को कुछ ही हाथों में इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि आम सहमति बनाना, झगड़ों को सुलझाना और समाज में तालमेल बनाए रखना था। सत्ता अक्सर बटी हुई होती थी, अलग अलग समूहों के बीच संतुलन में रहती थी,
जैसे बुजुर्गों की परिषदें।
हाँ, बुजुर्गों की परिषदें, या फिर वो आयु वर्ग संघ जिनकी हमने बात की थी।
आयु वर्ग संघ, हाँ, ये क्या होते थे, थोड़ा और बताएंगे?
जरूर। ये समाज में लगभग एक ही उम्र के लोगों के समूह होते थे, मर्दों के भी औरतों के भी। उनकी कुछ सामूहिक जिम्मेदारियां होती थी, जैसे गांव की रक्षा करना, कोई सार्वजनिक काम करना या नियम कानून लागू करवाने में मदद करना। ये व्यवस्था सत्ता को एक जगह केंद्रित होने से रोकती थी और ज्यादा लोगों की भागीदारी पक्की करती थी। सत्ता का काम यहाँ नियंत्रण से ज्यादा संतुलन साधना था।
कितना दिलचस्प है। अच्छा, डेविडसन बड़े साम्राज्यों की भी बात करते हैं, जैसे अशांति या कॉन्गो।
हाँ, बिल्कुल। वो अफ्रीका के कुछ महान साम्राज्यों का भी अध्ययन करते हैं, घाना का अशांति साम्राज्य, नाइजीरिया के युरुबा शहर राज्य या कॉन्गो साम्राज्य। इनमें अक्सर दैवीय राजत्व की व्यवस्था थी, मतलब राजा या शासक को राष्ट्र की सेहत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था।
लेकिन ये राजा तानाशाह नहीं होते थे।
नहीं, लगभग कभी नहीं। यही खास बात है, ये शक्ति लगभग कभी भी असीमित नहीं थी। राजा भी स्थापित रिवाजों और कानूनों से बंधा होता था। उसे शक्तिशाली परिषदों से सलाह लेनी पड़ती थी और अक्सर ये परिषदें उसे नियंत्रित भी करती थीं। राजा का काम अपनी प्रजा की भलाई का प्रबंधन करना था, उन पर तानाशाही करना नहीं।
और अगर राजा सही से काम ना करे
तो उसे पद से हटाया भी जा सकता था। यहाँ तक कि कभी कभी आत्महत्या करने पर मजबूर भी किया जा सकता था, अगर माना जाता कि उसकी वजह से राज्य पर कोई बड़ी मुसीबत आई है। जैसे बुगांडा की संसद, जिसे लुकीको कहते थे, वो अफ्रीकी लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का एक पुराना उदाहरण है। ये यूरोप में ऐसी व्यवस्थाओं के आने से सदियों पहले मौजूद थी।
कमाल है। और फिर वो समाज आते हैं जिन्हें राज्य विहीन कहा गया, जैसे इग्बो लोग।
ये डेविडसन के तर्क का एक मुख्य हिस्सा है। वो दिखाते हैं कि कैसे लाखों लोग बिना किसी राजा या केंद्रीय सरकार के बड़े समृद्ध और व्यवस्थित समाजों में रहते थे। यहाँ व्यवस्था का उद्देश्य ही अलग था, विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी।
तो फिर व्यवस्था चलती कैसे थी, अगर कोई राजा नहीं, कोई केंद्रीय सरकार नहीं?
व्यवस्था चलती थी वंश और कबीले के संबंधों के नेटवर्क से, आयु वर्ग प्रणालियों से और बाजारों से। बाजार सिर्फ व्यापार की जगह नहीं थे, वो सामाजिक और राजनैतिक मेलजोल के केंद्र भी थे। कानून रिवाजों और आम सहमति पर आधारित था। झगड़ों को प्रभावित परिवारों के बुजुर्ग मिलकर सुलझाते थे। ये एक अलग ही किस्म की राजनैतिक प्रतिभा थी, जिसका ध्येय था कट्टर विकेंद्रीकरण।
ये तो बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्थाएं थी।
अच्छा, फिर किताब के तीसरे और अंतिम भाग में बाहरी दुनिया से टकराव की बात आती है।
हाँ, भाग 3, परिवर्तन की चुनौती। यहाँ डेविडसन यूरोप के साथ संपर्क के जो विनाशकारी असर हुए उनका विश्लेषण करते हैं। अटलांटिक दास व्यापार, वो एक अभूतपूर्व तबाही थी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तटों से लोगों को उठाकर ले जाना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। गुलामों की जो लगातार बढ़ती यूरोपीय मांग थी, उसने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों तक असर डाला। उसने अफ्रीकी राजनीति को, मतलब बुनियादी तौर पर, भ्रष्ट कर दिया।
कैसे?
उसने कैसा दुष्चक्र बनाया। तट के पास के राज्य या सरदार, वो यूरोपीय बंदूकें हासिल करने के लिए अंदरूनी इलाकों पर हमला करके बंदी बनाते थे। फिर उन बंदूकों का इस्तेमाल वो और ज्यादा हमले करने के लिए करते, जिससे वो और शक्तिशाली और सैन्यवादी होते गए। इसने पुराने गठबंधनों को तोड़ दिया, समाजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, हिंसा और डर का माहौल बना दिया।
इसने तो कानून और न्याय व्यवस्था को भी बिगाड़ दिया होगा।
बिल्कुल, कानून का महत्व घट गया और न्याय व्यवस्था बंदी बनाने का एक जरिया बन गई। डेविडसन इसे एक राजनीतिक कैंसर कहते हैं, जिसने अफ्रीकी संस्थानों को अंदर से खोखला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इंसानों को पकड़ना और बेचना ही मुख्य राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि बन गई कई जगहों पर।
कितना भयानक। और फिर 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका का बंटवारा हुआ, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका।
हाँ, उसने एक नए तरह का विघटन पैदा किया। उपनिवेशवाद सिर्फ राजनीतिक कब्जा नहीं था, वो अफ्रीका को पूरी तरह बदलने की एक परियोजना थी, जिसका मकसद अफ्रीका को यूरोप के हितों के मुताबिक ढालना था।
उन्होंने मनमानी सीमाएं खींच दी।
हाँ, मनमानी सीमाएं खींची, जिन्होंने जमीनी, जातीय और राजनीतिक हकीकतों को देखा ही नहीं। उन्होंने स्थानीय राजनीतिक ढांचों को या तो नष्ट कर दिया या उन्हें अप्रत्यक्ष शासन यानी इनडायरेक्ट रूल में शामिल कर लिया। इसमें स्थानीय मुखिया औपनिवेशिक सरकार के छोटे मोटे प्रशासक बन गए। इससे उनकी पारंपरिक वैधता, उनका जो मान सम्मान था, वो खत्म हो गया।
और फिर औपनिवेशिक कानून, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, इन सब ने मिलकर उस अफ्रीकी प्रतिभा की नींव को ही कमजोर कर दिया, जिसका जिक्र ये किताब करती है।
इसने पहचान का, निरंतरता का एक गहरा संकट पैदा किया। हालांकि डेविडसन अफ्रीकी लोगों के प्रतिरोध को भी दिखाते हैं, जैसे अंगोला की रानी नजिंगा का पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ 40 साल लंबा संघर्ष। ये अफ्रीकी राजनीतिक सूझबूझ और मुश्किल हालात में ढल जाने की क्षमता का एक उदाहरण है, लेकिन नुकसान बहुत गहरा था।
तो इस पूरी इतनी गहरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कौन से वो जरूरी संदेश हैं जो डेविडसन हमें देना चाहते हैं इस किताब के जरिए?
देखिए, पहली और सबसे अहम बात तो यही है, इतिहास विहीन अफ्रीका के मिथक का पूरी तरह खंडन। डेविडसन ने जोरदार तरीके से यह साबित किया कि उपनिवेशवाद से बहुत पहले अफ्रीका का अपना जटिल दर्शन था, कानून थे, कला थी, राजनीति थी। उनका मकसद ही इस झूठी धारणा को तोड़ना था।
और यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी संस्कृति को कम आंकना कितना गलत है।
बिल्कुल। दूसरा संदेश है सामाजिक एकता का महत्व। पारंपरिक अफ्रीकी संस्थानों का अंतिम उद्देश्य समुदाय में सद्भाव और संतुलन बनाए रखना था, चाहे वो पूर्वजों का अधिकार हो या बुजुर्गों की मध्यस्थता या जादू टोने की प्रक्रिया ही क्यों ना हो। सामूहिक भलाई को अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर रखा जाता था।
ये बात आज भी सोचने वाली है ना, हमारे अपने समाजों के लिए भी।
जरूर। तीसरा, राजनीतिक प्रतिभा की विविधता और अनुकूलनशीलता। शासन करने का कोई एक अफ्रीकी तरीका नहीं था। बड़े साम्राज्य भी थे, राज्यविहीन समाज भी थे। दोनों ने अपनी अपनी तरह से नवीनता दिखाई। असली प्रतिभा अलग अलग माहौल और सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से असरदार व्यवस्थाएं बनाने में थी। इन व्यवस्थाओं का काम स्थिरता और समृद्धि लाना था, ढांचा चाहे कोई भी हो।
जैसे हम भारत में ही कितनी विविधता देखते हैं शासन और समाज की।
हाँ, कुछ वैसा ही। चौथा संदेश है कि शक्ति अधिकार नहीं बल्कि एक भरोसा है, एक जिम्मेदारी है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली राजतंत्रों में भी शासक का अधिकार शर्तों पर आधारित था। ये समुदाय और पूर्वजों द्वारा दिया गया एक पवित्र दायित्व था और इसे वापस भी लिया जा सकता था। राजा का काम समुदाय की सेवा करना था।
ये नेतृत्व की जवाबदेही का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है आज के लिए भी।
बहुत महत्वपूर्ण। और पांचवा संदेश है बाहरी ताकतों का विनाशकारी संक्षारक प्रभाव। दास व्यापार और उपनिवेशवाद ने सिर्फ दमन नहीं किया, उन्होंने अफ्रीकी समाजों को अंदर से विकृत कर दिया, उनकी आंतरिक तर्क व्यवस्था को तोड़ दिया। उनका प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक था, जिससे हिंसा, अस्थिरता और निर्भरता का एक ऐसा रास्ता बना जिसके निशान आज भी बाकी हैं।
ये हमें इतिहास के दूरगामी प्रभावों को समझने में मदद करता है कि कैसे अतीत आज भी वर्तमान को आकार दे रहा है।
बिल्कुल।
इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ साझा कर सकते हैं?
सुनने के लिए पहले उसके धर्म को समझना होगा, क्योंकि दोनों कभी अलग नहीं थे। वे एक ही सर्वव्यापी वास्तविकता के विभिन्न पहलू थे जो लोगों को उनके पूर्वजों, उनकी भूमि और ब्रह्मांड से बांधते थे।
मतलब हमें उनकी दुनिया को उनके नजरिए से देखना होगा, अपनी पश्चिमी सोच को अलग रखकर। धर्म का काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था।
सही कहा। दूसरा विचार, कई अफ्रीकी लोगों ने साबित किया कि राज्य के बिना भी सरकार संभव है। उन्होंने राजा के आदेशों से नहीं बल्कि परिवारों, आयु वर्गों और परिषदों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के माध्यम से व्यवस्था और स्थिरता हासिल की, जिससे फैली हुई सत्ता का एक रूप बना जो कई मायनों में गहरा लोकतांत्रिक था।
ये तो राज्य केंद्रित सोच को सीधी चुनौती है और दिखाता है कि राजनीतिक संगठन के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं।
बिल्कुल। मानवीय त्रासदी से बढ़कर था, ये एक राजनीतिक कैंसर था। इसने हिंसा को पुरस्कृत किया और विश्वासघात को बढ़ावा दिया, अफ्रीकी संस्थानों को भीतर से खोखला कर दिया और न्याय और राजत्व की प्रणालियों को मनुष्यों को पकड़ने और बेचने के उपकरणों में बदल दिया।
ये सिर्फ नैतिक पतन से आगे बढ़कर गहरे संरचनात्मक प्रभाव की बात करता है, सिस्टम को ही बिगाड़ दिया।
हाँ। और चौथा विचार, जो किताब के शीर्षक द अफ्रीकन जीनियस को सही मायने देता है, अफ्रीका की प्रतिभा पत्थर के महान स्मारक बनाने में उतनी नहीं थी जितनी लचीले और मानवीय समुदायों के निर्माण में थी। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां सामाजिक और राजनीतिक थीं। लोगों के लिए सापेक्ष शांति, सद्भाव और सुरक्षा में एक साथ रहने के अनगिनत तरीके ईजाद करना।
ये तो सभ्यता और उपलब्धि की हमारी परिभाषा पर ही सवाल उठाता है, सामाजिक संगठन के महत्व पर जोर देता है।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का, इन विचारों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं?
हाँ, मेरे ख्याल से कई बातें हैं। सबसे पहले तो ये हमें अपनी सोच में यूरोसेंट्रिज्म को चुनौती देने में मदद करता है। मतलब ये मानना कि यूरोपीय विचार या तरीके ही सबसे अच्छे हैं।
हाँ, ये प्रवृत्ति होती है अक्सर।
होती है। ये किताब हमें सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना सिखाती है और ये समझना कि समाज को चलाने के कई अलग अलग और जायज तरीके हो सकते हैं। विकास या प्रगति का कोई एक ही रास्ता नहीं होता।
दूसरा, ये आधुनिक अफ्रीका की चुनौतियों को समझने में मदद करता है, जैसे वो मनमाने ढंग से खींची गई सीमाएं, जातीय तनाव, शासन के संघर्ष, इनको उस ऐतिहासिक सदमे दास व्यापार, उपनिवेशवाद के संदर्भ में देखना जरूरी है।
हाँ, उस संदर्भ के बिना आज को समझना मुश्किल है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अफ्रीका को समझना चाहता है या वहां काम करता है। वर्तमान को समझने में इस इतिहास की भूमिका अहम है।
तीसरे, यह शासन के वैकल्पिक मॉडलों पर सोचने को मजबूर करता है ना, वो राज्यविहीन समाज या राजाओं पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्थाएं।
बिल्कुल, उनसे हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में सीख सकते हैं। समुदाय के विश्वास पर आधारित नेतृत्व कैसा हो, जवाबदेही कैसे तय हो, ये विचार आज सामुदायिक संगठन के लिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए और जमीनी लोकतंत्र के लिए प्रेरणा दे सकते हैं।
चौथे, संघर्ष समाधान के लिए भी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं शायद।
हाँ, सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देना, मध्यस्थता करना, आम सहमति बनाने की कोशिश करना और सिर्फ सजा देने के बजाय समस्या की जड़ में जो सामाजिक तनाव है उन्हें दूर करने की कोशिश करना, ये पारंपरिक तरीके आज भी काम आ सकते हैं।
समुदायों में, दफ्तरों में, यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों में भी उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना, संतुलन वापस लाना है।
बिल्कुल, और अंत में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए ये किताब उनकी विरासत का एक समृद्ध, एक सकारात्मक नजरिया पेश करती है, नस्लवादी चित्रणों का मुकाबला करती है और ऐतिहासिक गौरव की भावना को मजबूत करती है। और हम सभी के लिए ये मानव इतिहास की पूरी ज्यादा सच्ची तस्वीर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी महाद्वीपों का योगदान शामिल हो।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये थी कि जिन चीजों को हम अक्सर अंधविश्वास या पिछड़ापन कहकर शायद खारिज कर देते, जैसे जादू टोना या बिना राजा वाले समाज, उनके पीछे भी एक जटिल सामाजिक तर्क था, एक व्यवस्था थी, उनका एक स्पष्ट सामाजिक कार्य था, एक उद्देश्य था, भले ही वो हमें आज अजीब लगे।
हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये रही कि बाहरी ताकतों द्वारा लाए गए इतने बड़े विनाश के बावजूद अफ्रीकी समाज कितने लचीले थे, कितने अनुकूलनीय थे और शक्ति को एक पवित्र भरोसे के रूप में देखने की उनकी अवधारणा कितनी गहरी थी कि शासक का काम सेवा करना है, हुकुम चलाना नहीं। ये किताब वाकई अफ्रीका को इतिहास के सिर्फ एक शिकार के तौर पर नहीं देखती बल्कि एक सक्रिय, रचनात्मक और हाँ, प्रतिभाशाली कर्ता के रूप में देखने का नजरिया देती है। स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को समझना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है ये भी पता चलता है।
ये किताब वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज की इस दुनिया में, जहाँ केंद्रीकृत सत्ता और राष्ट्र राज्य इतने हावी हैं, हम सामुदायिक संतुलन और विकेंद्रीकृत शासन के इन प्राचीन अफ्रीकी विचारों से कुछ सीख सकते हैं? एक सवाल जो शायद हमें अपने साथ ले जाना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।